आयु अपने रूम के बाथरूम में थी। वो पूरे रात आरव के साथ थी, इस वजह से उसके दिल में उसी के ख्याल चल रहे थे। तैयार होते हुए समय आयु ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो उसे अपनी गर्दन के पास एक लाल बड़ा सा निशान दिखा। वो निशान आरव के हार्डली किस करने की वजह से हुआ था। उस निशान को देखते ही आयु समझ गई थी कि जरूर ये आरव ने ही किया होगा। अब उसे आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आयु ने चिल्लाकर कहा, फिर कहते हो मैं गुस्सा करती हूँ, हरकतें ही ऐसी हैं तुम्हारी। तब तो बड़ा कह रहा था मैंने नशे में होने का फायदा नहीं उठाया, अब ये क्या है, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं ठरकी खुराना। फिर आयु की नज़र आरव के ब्लेजर पर पड़ी। उसे देखकर आयु ने कहा, अब ये ही मुझे तुम तक पहुँचाएगा, इसे क्लीन करवा के दिया तो दो दिन और लग जाएंगे, वैसे भी तुम्हें ये ऐसे ही चाहिए था। बोलते हुए आरव ने ब्लेजर अच्छे से पैक किया। उसके बाद आयु ने अयान को कॉल किया। उसने कॉल पर कहा, सुनो कल का हिसाब तुमसे बाद में लूंगी, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। ओह रियली, गलती सारी तेरी और हिसाब मुझसे लोगी? किस बात का हिसाब? अयान मुंह बनाकर बोला, तुमने मुझे पूरी रात आरव खुराना के पास छोड़ दिया, उस बात का हिसाब। क्या होता जो वो मेरे नशे में होने का फायदा उठा लेता? आयु चिढ़कर बोली। वो ऐसे इंसान नहीं है, चल मैं लेट हो रहा हूँ, तुझे आना हो तब आ जाना, कहकर अयान ने कॉल कट कर दिया। अयान के कॉल कट होते ही आयु ने फिर से मिरर में देखा और उस निशान पर हाथ रखकर कहा, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि वो कैसा इंसान है। आयु ने चेंज किया और आरव से मिलने के लिए तैयार होने लगी। उसने बैगी डेनिम ट्राउजर्स पहने थे और उसके ऊपर लॉन्ग स्लीव्स का हाईनेक क्रॉप पहना था। हाईनेक होने की वजह से उसे मार्क छुपाना नहीं पड़ा और वो छुपाना भी नहीं चाहती थी। आयु ने अपने बालों को पूरा खुला छोड़कर आगे की तरफ कर रखा था। रेडी बोलते हुए उसने परफ्यूम लगाया और कहा, आरव खुराना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। आयु ने बैग उठाया और अपनी गाड़ी लेकर खुराना इंडस्ट्रीज जाने के लिए निकल पड़ी। लगभग 11 बजे के करीब आयु खुराना इंडस्ट्रीज के आगे थी। गाड़ी पार्क करने के बाद आयु ने एक नज़र बिल्डिंग पर डाली। वो एक 40 फ्लोर की लैविश बिल्डिंग थी जहाँ खुराना इंडस्ट्रीज का मेन ब्रांच था। ये मुंबई का सबसे बड़ा ड्रेस डिजाइनिंग हब था। उसे एक नज़र आयु ने कहा, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अमीर और बिगड़ा हुआ इंसान। आयु ने मुंह बनाया और अंदर चली गई। एंट्रेंस से खोड़ा जाकर एक बड़ा सा रिसेप्शन एरिया था। आयु वहां गई और हेड रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे आरव खुराना से मिलना है। आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। वो तो नहीं है, आयु ने जवाब दिया। तब आप उनसे नहीं मिल सकती, आप ऐसा कीजिए एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट मेल सेंड कर दीजिए जिसमें मिलने का रीज़न मेंशन कर दीजिए। 1 वीक के बाद रिप्लाई मेल आ जाएगा और आपकी मीटिंग भी फिक्स हो जाएगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे सारी प्रक्रिया समझा दी। उसकी बातें सुनकर आयु का सिर चकरा गया। वो खुद से बड़बड़ाकर बोली, हद है, 1 वीक, क्या उससे मिलना इतना मुश्किल है क्या? मुझे तो हर दूसरे दिन हॉस्पिटल में मिल जाता था, नंबर भी नहीं है, कैसे कांटेक्ट करूं? आयु परेशान चेहरे के साथ वहां खड़ी थी। उसने सोचा नहीं था आरव से मिलना उसके लिए इतना मुश्किल होने वाला है। आयु वहां परेशान होकर खड़ी थी तभी रिसेप्शनिस्ट के पास वाली जूनियर रिसेप्शनिस्ट ने उसे कहा, मैम कहीं ये यहाँ जॉब के लिए तो नहीं आई है ना? उसकी बात आयु ने सुन ली थी, उसे आरव से मिलने का बहाना मिल गया। वो कुछ कह पाती उससे पहले हेड रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यहाँ का वेटिंग स्टाफ तक हायर रहता है, कभी सुना है खुराना इंडस्ट्रीज ने कभी कोई जॉब वैकेंसी डाली हो? उसकी बात सुनकर आयु का चेहरा उतरा गया। उसे आरव से मिलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। एक आखिरी कोशिश करते हुए आयु ने कहा, क्या एक बार मेरी उनसे बात हो सकती है? हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं कॉल पर बात करूंगी तो वो पहचान जाएगा। सॉरी मैम, ये पॉसिबल नहीं है, रिसेप्शनिस्ट ने साफ मना कर दिया। आयु वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे आवाज़ लगाकर कहा, एक मिनट रुकिए, कहीं आप मॉडलिंग के लिए तो नहीं आई? उसकी बात सुनकर आयु के चेहरे पर चमक आ गई। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और मासूम सा चेहरा बनाकर हाँ में सिर हिलाया। हालांकि इस बारे में युवानी मैम मुझे पहले ही अपडेट दे देती है, पर हो सकता है वो भूल गई होगी, मैं उनसे बात करके आपको उनके पास भेज देती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रुकने का कहा और युवानी को कॉल करने लगी। थैंक गॉड, कैसे ही सही लेकिन यहाँ एंट्री तो मिली। अब वो युवानी जो भी है मैं उससे बात करके आरव से मिलने की रिक्वेस्ट कर दूंगी। सोचा नहीं था जो इंसान मुझे इतना इरिटेट करता है उससे मिलने के लिए मैं यहाँ बहाने बना रही हूँ, आयु ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। वही रिसेप्शनिस्ट ने युवानी को कॉल पर कनेक्ट कर लिया था। सारी बात सुनने के बाद युवानी ने कहा, मुझे भी इस बारे में नहीं पता, पर कबीर सर और आरव सर जब किसी बी टाउन पार्टी में जाते हैं तो कोई मॉडल पसंद आने पर उन्हें डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। हो सकता है मैम, क्योंकि ये दिखने में काफी खूबसूरत है, फैशन सेंस भी अच्छा है और किसी मॉडल की तरह ही
लग रही है, बोलते हुए रिसेप्शनिस्ट ने आयु की तरफ देखा। ठीक है, तुम भेज दो, फिर मैं कबीर को बुलाती हूँ, युवानी ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। युवानी से बात करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने आयु को ऊपर जाने की इजाज़त दे दी थी। उसने आयु से कहा, आप 25th फ्लोर पर जाइए, वहाँ आपको युवानी में मिल जाएगी। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और मुस्कुराकर थैंक्स कहा। फिर वो तेज़ कदमों से चलकर लिफ्ट की तरफ गई और जल्दी से 25th फ्लोर का बटन दबाया। अगले कुछ ही मिनटों में वो वहाँ पहुँच चुकी थी। एक एम्प्लॉय से बात करने के बाद उसे मीटिंग रूम में भेज दिया गया, जहाँ वो बैठकर युवानी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही युवानी अंदर आई, उसने आयु से कहा, अच्छा तो मुझे जल्दी से अपना पोर्टफोलियो दे दो और ये भी बता दो कि तुम कौन से कैटलॉग सूट के लिए फाइनल हुई हो। उस हिसाब से मैं डिजाइनर से बात करके तुम्हें डेट दे दूंगी, सूट के दिन टाइम से आ जाना। युवानी काफी जल्दी में थी, इसलिए वो सारा काम जल्दबाजी में निपटाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर आयु ने कहा, लेकिन मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है और ना ही मैं कोई मॉडल हूँ, मैं बस आरफ से मिलना चाहती हूँ, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब प्लीज तुम उसे बुला दोगी? आयु की बात सुनकर युवानी को गुस्सा आ गया। उसने आंखें छोटी करके कहा, आर यू सीरियस? मैं यहाँ अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर तुमसे मिलने आई थी और तुम झूठ बोलकर ऊपर तक पहुंची हो? तुम जैसी लड़कियां यहाँ बहुत आती रहती हैं जो आरफ सर की फैन होती हैं, पर इतनी गुस्ताखी किसी ने नहीं की कि झूठ बोलकर ऊपर तक आ जाए। अब चुपचाप यहाँ से जा रही हो या मैं गार्ड को बुलाऊं? युवानी ने सीधे सीधे धमकी दी। लिसन, मैं यहाँ कोई गलत इंटेंशन से नहीं आई हूँ, मुझे बस आरफ से मिलना है, हम एक दूसरे को जानते हैं, आयु ने प्लीडिंग वे में कहा। तुम्हारा इंटेंशन जो भी रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। इससे पहले कि यहाँ तमाशा क्रिएट हो और तुम्हें जेल जाना पड़े, खुद ही यहाँ से चली जाओ, युवानी ने वार्निंग दी। आयु के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। पहली बार उसे इतना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। वो पिछले आधे घंटे से आरफ से मिलने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नाकामी हाथ लगी। आयु ने युवानी की बात पर हामी भरी और वहां से जाने के लिए मुड़ी। युवानी भी उसके साथ ही आ रही थी। जैसे ही वो दोनों दरवाजे तक पहुंची, वहां कबीर आया। युवानी को लगा कि उनकी फाइनल की हुई मॉडल आ रही है, इसलिए उसने कबीर को बुला लिया था। आयु को वहां देखते ही कबीर ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने कब से मॉडलिंग शुरू कर दी?
कबीर को देखते ही आयु के चेहरे पर राहत के भाव थे। उसने मुस्कुराकर कहा, ट्रस्ट मी, मैं किसी से मिलकर कभी इतना खुश नहीं हुई जितना आज तुम्हें देखकर हो रही हूँ। थैंक गॉड तुम आ गए, ये लोग मुझे आरफ से मिलने नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें उनसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा, कबीर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वो जानता था कि आयु आरफ के लिए कितनी मायने रखती है। वहीं युवानी उन दोनों की बातें हैरानी से सुन रही थी। उसने कबीर से पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, और कैसे जानता हूँ इस बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इसे आरफ सर तक पहुँचा दो, बोलते हुए कबीर ने आयु की तरफ देखकर कहा। सर का ऑफिस 35th फ्लोर पर है, वो अब तक आई नहीं है, बस कुछ देर में पहुँचते ही होंगे। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। वहीं युवानी आयु के सामने कुछ पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, इसलिए वो भी कबीर के पीछे चल दी। आयु को आरफ के केबिन तक पहुंचाने के बाद कबीर युवानी के साथ वापस आने लगा। कबीर ने युवानी के चेहरे को देखा और मुस्कुराकर कहा, आई नो तुम्हारा दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। हाँ, चलना ही है, क्योंकि पता है ना, इस फ्लोर पर किसी को आना अलाउ नहीं है। मैं सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, फिर भी उनके केबिन के अंदर नहीं जा पाती। ये तो तुम हो जो मेरा काम देख लेते हो, वो तो लड़कियों से ठीक से बात तक नहीं करते और तुम उसे उनके केबिन तक छोड़कर आए हो। और ये लड़की कौन है जो सर से मिलने के लिए इतना डेस्परेट हो रही थी कि झूठ बोलकर ऊपर तक आ गई? युवानी के दिमाग में वाकई काफ़ी कुछ चल रहा था, इसलिए उसने सारे सवाल एक साथ पूछ डाले। वैसे तो तुम्हें इस बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता देता हूँ, ये लड़की सर के लिए बहुत खास है, उतनी ही जितनी तुम मेरे लिए हो, कबीर ने इशारे इशारे में कहा। क्या आरफ सर इस लड़की को पसंद करते हैं? वो तो माहिरा मैम के साथ रहते हैं, युवानी ने चौंक कर पूछा। साथ रहने और प्यार होने में फ़र्क होता है, अब ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा टाइम मुझे भी तो दो, कबीर ने युवानी का ध्यान भटकाने के लिए कहा। उसने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और नोज पर हल्का सा किस किया। वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले लिफ्ट रुक गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कबीर और युवानी लिफ्ट से ऐसे बाहर निकले जैसे उनके बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता हो। वहीं आयु आरफ के केबिन में बैठकर उसका वेट कर रही थी। वो बैठे बैठे बोर होने लगी तो वो उस फ्लोर पर घूमने लगी। वो पूरा फ्लोर आरफ का था, जहां उसके अलावा किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। फ्लोर पर उसकी ज़रूरत के हिसाब से हर एक फैसिलिटी अवेलेबल थी। पूरा फ्लोर घूमने के बाद आयु वापस आरफ के केबिन में आ गई। वो जाकर बैठी ही थी कि तभी आरफ वहां आ गया।